ओ, शॉकिंग रिएक्शन। कुछ ही मिनटों में अरमान ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी पलकें पूरी तरह खुली, अचानक ही वो झटके से उठकर बैठ गया। उस पल उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसने दो तीन बार अपने कनपट्टियों को सहलाया, फिर आंखें पूरी तरह खोलकर अपने आसपास के माहौल को गौर से यहां वहां देखने लगा, जैसे हर चेहरा हर चीज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अब आगे। उस वक्त अरमान के सिर में बेहिसाब दर्द था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपना दर्द सहते हुए सामने देखा, ध्रुव वहीं खड़ा था। ध्रुव तुरंत अरमान के पास आया और चिंतित होकर धीमी आवाज में उससे पूछा, अरमान भाई, आप ठीक तो है ना? पास ही में आहान, आकाश, सुमित, टाइगर और मारिया सभी अरमान के चेहरे पर नजर कढ़ाए हुए उसे एकटक देख रहे थे। उन सबका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने पलकें झपकाई और अपनी नजरें अरमान पर जमा दी। कहीं ना कहीं सबको बस इसी जवाब का इंतजार था कि अब अरमान पूरी तरह ठीक है। लेकिन अरमान ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बार बार अपने कनपट्टियों को दबाने लगा। अचानक हल्की मगर ठंडी आवाज में बोला, डॉक्टर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फटाफट से मुझे पेनकिलर दो। भले ही उसके लहजे में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें पहले जैसा वही कड़वापन और आदेश छलक रहा था। डॉक्टर ने जल्दी से इंजेक्शन तैयार किया और अरमान को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अरमान ने बस उसकी ओर एक तीखी नजर डाली। उधर आहान ने ध्रुव के कान में बेचैनी से सवाल पूछा, ये क्या, हम सब सामने खड़े हैं लेकिन भाई ने एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया, बस डॉक्टर से पेनकिलर मांग ली। चलो मानता हूं सर में दर्द है, पर तेरे सवाल का जवाब तो दे सकते थे ना? ध्रुव कुछ कह पाता उससे पहले अरमान ने तिरछी सी निगाह आहान पर डाली, ऐसी निगाह जिससे आहान का शरीर कंपकपाने लगा। उसे अजीब सा एहसास महसूस होने लगा, मानो जैसे कोई अदृश्य दबाव उसके ऊपर उतर आया हो। तभी ध्रुव ने आकाश को चुपके से अरमान के पास जाने का इशारा किया। आकाश हामी भरते हुए सिर हिलाया और अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे धीमी आवाज में सवाल किया, अरमान, तुम ठीक हो ना? अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अरमान ने आईब्रो तरेरी और आकाश की ओर बेपरवाही से देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, आकाश, ये क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो? मैं ठीक हूं या नहीं? मैं अरमान सिंघानिया हूं, मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती, उसने कड़क अंदाज से जवाब दिया। आकाश, सुमित और ध्रुव ने एक साथ राहत की सांस ली। कम से कम अरमान ने उन्हें या किसी और को भुलाया तो नहीं था, फिलहाल वो नॉर्मल ही लग रहा था। फिर अरमान ने टाइगर की ओर एकदम से देखा और रूडली वॉइस में सवाल किया, टाइगर, मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या वो पूरा हो गया? टाइगर हैरान होकर एकदम से बोला, लेकिन किंग, आपने तो मुझे कोई काम नहीं दिया, सिर्फ मारिया को। इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही अरमान की भौहें सिकुड़ गईं और उसने हल्की नाराजगी से उसे डांटा, टाइगर, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे झूठ बोलने वाले और गलती करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुम्हें बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को सजा देने का काम दिया था, तुमने वो काम किया या नहीं? ये सुनते ही अगले ही पल टाइगर का दिमाग चकरा गया। उसे याद आया, हाँ, 2 साल पहले अरमान ने उसे विदेश भेजा था, जहां एक गैंग भारत से छोटे छोटे बच्चों को विदेश में सप्लाई करता था। टाइगर ने तब वो काम कंप्लीट कर दिया था, 2 साल पहले। फिलहाल वो खुद के इमोशन संभालते हुए हल्की आवाज में बोला, यस किंग, वो काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सभी ने ये बात सुनकर कंधे उचकाए और एक दूसरे को नासमझी में देखा। तब तक इंजेक्शन का असर होने लगा और अब अरमान की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अपनी बात खत्म करके टाइगर तुरंत आकाश के पास चला आया और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। आकाश ने जैसे ही टाइगर की बात सुनी, उसका चेहरा फीका पड़ गया और वो पसीने से तर हो गया। बिना देर किए उसने सुमित और ध्रुव को ये बात बता दी, अरमान ने अपनी 2 साल पहले की यादें खो दी हैं। ये बात सुनते ही कमरे की हवा जैसे ठहर सी गई, सभी एक दूसरे का चेहरा बेबसी से देखने लगे, मानो जैसे ये कुछ शब्द सबके लिए हथौड़े की तरह थे। उनका दिमाग एकदम से खाली हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बम गिरा हो, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सभी का इस वक्त हैरानी और सदमे के मारे बुरा हाल हो चुका था। मिनी हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त सबके चेहरे जैसे उम्मीद खो चुके हों, सब मुंह लटकाए चुपचाप बाहर आकर बैठ गए। टाइगर और मारिया के चेहरे पर भी बेचैनी और डर के भाव साफ छलक रहे थे। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि जिस बात का डर उनके दिल में पनप रहा था वही अनहोनी हो चुकी है। अरमान अपनी यादों से आस्था को पूरी तरह से खो चुका था, वो आस्था जिसने एक बेरहम, गुस्सैल और साइको अरमान सिन्हानिया को संभालकर एक नॉर्मल इंसान बनाया था, जिसकी दुनिया में अब प्यार और अपनापन था। वही अरमान अब दोबारा अपने खतरनाक डेविल किंग के रूप में लौट चुका था, वो अरमान जिसे लड़कियों से नफरत थी, जो कभी किसी लड़की को अपने करीब भी नहीं आने देता था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद आहान ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, अब क्या होगा, हम आस्था भाभी को क्या जवाब देंगे? उनका तो दिल ही टूट जाएगा, वो बेचारी अभी अभी तो कुछ दिनों के लिए अविनाश भैया के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपने घर गई थी, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा वो तुरंत दौड़कर यहां आ जाएंगे। इतना सुनते ही सुमित ने उसे तुरंत बीच में टोक दिया। नहीं आहान प्लीज ये गलती कभी मत करना। आस्था को यह बिल्कुल भी मत बताना कि अरमान के साथ क्या हादसा हुआ है। उसे गए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और इस वक्त उसे परेशान करना ठीक नहीं। सुमित की बात सुनकर आहान चुप हो गया, फिर धीमे स्वर में बेबसी से बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अरमान भाई को कैसे संभालेंगे? हम उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम घर वालों को क्या बताएंगे? दादाजी कई बार फोन करके अरमान भाई के बारे में पूछ चुके हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अब ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों देखने लगे। न चुप्पी टूट रही थी न हल निकल रहा था। तभी आकाश हिम्मत करके आगे आया और बिना एक्सप्रेशन के एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें घर जाकर ये सब कुछ संभालना होगा और आस्था और अंश से जुड़ी हुई जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो सब हटानी होंगी। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि अरमान को सिंघानिया मेंशन में ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आनी चाहिए जिससे उसकी 2 साल पुरानी यादों का कुछ लेना देना हो। आकाश ने दिल पर पत्थर रखकर सख्ती से ध्रुव और आहान को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर सिंघानिया मेंशन में जितनी भी अरमान अंश और आस्था की फोटो है और बाकी सभी की फोटो सबके कमरों से निकालकर कहीं छुपा दो। उसने ध्रुव और आहान को ये जिम्मेदारी देकर घर भेज दिया ताकि वे दादाजी और बाकी सभी को सिचुएशन समझा सके और नानी माँ को भी बता दें कि इस वक्त उन्हें कैसा बर्ताव करना है। ध्रुव ने एक आखिरी इंस्ट्रक्शन दी, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा और अरमान के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ा तो जो वायरस उन्हें दिया गया है तब तक हम उसका कोई एंटीडोट ढूंढ लेंगे। वो वंशिका से भी इस बारे में डिस्कस करना चाहता था, शायद वो उसका कोई इलाज बता सके। यही सोचकर ध्रुव और आहान जल्दी घर की ओर रवाना हो गए। सुमित, आकाश, टाइगर और मारिया वहीं रुके रहे क्योंकि टाइगर और मारिया ने अरमान को अकेला छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया था। हालांकि आकाश और सुमित ने मारिया को कहा कि वो मेंशन जाकर थोड़ा आराम करें, लेकिन अगले ही पल मारिया ने त्रिष्ठा से मना कर दिया, मैं किंग को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उसकी आवाज में उदासी साफ छलक रही थी।
उधर सिंघानिया में इस वक्त नानी माँ चारों के साथ बैठी थीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद उनकी तबीयत कुछ संभल गई थी, इसीलिए वो वंशिका, राधिका, रौनक और रश्मि के साथ गपशप कर रही थी। रौनक सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो ज्यादा देर सीधा बैठ नहीं पाती थी। बाकी सब एक एक सीट वाले सोफों पर बैठे थे। वसुंधरा अपने और वीर के लिए खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। इसी बीच रौनक ने मुंह फुलाते हुए नानी माँ को सारी बातें सुना दी। वो बंदर मुझे कैसे खूर रहा था और कैसे हमने उसे फंसाने की कोशिश की ताकि अरमान भाई को उसका वीडियो दिखा सके, और उसके बाद अरमान भाई उन्हें धर से धक्का देकर बाहर निकाल दे। रौनक की बातें सुनकर नानी माँ एकदम से हंसी और तपाक से बोली, मुझे भी वो औरत बहुत ज्यादा जहर लगती है, लेकिन अब अगर दामाद जी ने उन्हें घर पर रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा बिटिया। फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा कि आखिरकार बात क्या है, ये वीर दामाद जी का भाई है भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो इस औरत पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। नानी माँ की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वसुंधरा और वीर के घर आने से वो कितनी ज़्यादा नाखुश हैं। फिलहाल नानी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन बिटिया मुझे पूरी उम्मीद है कि आस्था के यहाँ आने के पहले पहल ही दामाद जी इस औरत को उसके निकम्मे बेटे के साथ यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे। वैसे भी दामाद जी आस्था और अंश के आसपास किसी भी तरह के नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही नानी माँ ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये समझाया, वहाँ बैठी सभी लड़कियों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। और कहीं न कहीं रौनक तो अपना दिमाग पूरी तरह चला रही थी। वो सोच रही थी कि एक बार उसका पति यहाँ उसके पास आ जाए तो वो कुछ न कुछ प्लान बनाकर इन लोगों को घर से बाहर फेंकवा देगी। उसी वक्त नानी माँ ने बाकी लोगों को छोड़कर रश्मि की ओर उम्मीद से देखा और शांत स्वर ने बोली, बेटिया मुझे लगता है कि दामाद जी इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं और शायद इसीलिए वो अभी तक घर नहीं आए हैं। उन्हें घर से गए पूरे 24 घंटे होने वाले हैं और वो अभी तक नहीं लौटे। मैंने भाई साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी अरमान के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और तुम्हारे पति भी अभी तक नहीं आए हैं। एक काम करो, तुम आकाश बेटे को फ़ोन मिला कर दे, मैं उनसे बात करती हूँ। नानी माँ की बात सुनकर रश्मि ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और जल्दी से आकाश को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन लगते ही आकाश ने तुरंत हेलो कहा। तब रश्मि ने हल्के गुस्से में पूछा, आकाश आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? तुम लोग घर क्यों नहीं आ रहे हो और अरमान कहाँ है? अगर अरमान को ये लोग इतने ही नापसंद हैं तो हम इन्हें वापस भी तो भेज सकता है ना, इस तरह घर से दूर रहने का क्या मतलब है? रश्मि की बात सुनकर आकाश कुछ पल के लिए चुप रहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रश्मि को क्या जवाब दे। रश्मि ने उसकी खामोशी को भांपते हुए अगले ही पल चिंतित होकर पूछा, आकाश क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो, वरना तुम जानते हो ज्यादा सोचते हुए मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। इतना सुनते ही नानी माँ ने रश्मि को फोन देने का इशारा किया।
रश्मि बोली, लो एक मिनट, नानी माँ से बात करो। जल्दी ही नानी माँ ने फोन अपने हाथ में लेकर बेचैन होकर सवाल किया, आकाश बेटा, आखिर हो क्या रहा है? और दामाद जी ठीक तो है ना? देखो बेटा, अगर कोई दिक्कत हुई है तो तुम मुझे बता दो, मैं अभी आस्था बिटिया को फोन करके बुला लूंगी। तुम्हें पता है, आस्था ही है जो दामाद जी को हर सिचुएशन से निकाल सकती है। नानी माँ की बात सुनकर आकाश ने उदास मन से सोचा, इस बार तो अरमान की जिंदगी में ऐसी मुसीबत आई है जिसमें चाहकर भी ना आस्था और ना कोई यार उसकी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अरमान अपनी आस्था को भूल गया है। फिलहाल आकाश ने होंठ पीछे और नानी माँ को कुछ जवाब नहीं दिया। आकाश की चुप्पी को भांपते हुए नानी माँ एक पल के लिए हैरान हो गई और वो आकाश से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी खामोशी हमें डरा रही है बेटा, अगर कोई बात है तो हमें सच सच बता दो, कुछ हुआ है क्या? फिलहाल आकाश ने गहरी सांस ली और बेचैनी भरी आवाज में कहा, नानी माँ परेशान मत होइए, ध्रुव और आहान किसी भी पल घर पहुँचने वाले हैं, वो वहाँ आकर आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देंगे, बस आप सबको हिम्मत से काम लेना। इतना कहकर आकाश ने फोन काट दिया। आकाश की बात सुनकर अब नानी माँ अगले ही पल उलझन में पड़ गई और उनके चेहरे पर घबराहट और मायूसी छा गई। रौनक, जो सोफे पर लेटकर आराम से चिप्स खा रही थी, नानी माँ का चेहरा देखकर उसने परेशान होकर एकदम से पूछा, नानी माँ क्या हुआ, आपका चेहरा अचानक ऐसे मुरझा क्यों गया, सब ठीक तो है ना? नानी माँ ने बेख्याली में जवाब दिया, पता नहीं बिटिया, आकाश बेटा कह रहा था कि आहान बेटा और ध्रुव बेटा यहाँ आने वाले हैं और वहीं आकर बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, और तब तक हमें हिम्मत रखना है। उनकी ये बात वहाँ से आते हुए अभिमान जी और दादाजी ने भी सुन ली। दादाजी अभिमान जी को कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे ताकि अरमान के बारे में पता कर सकें, क्योंकि अब अरमान को गए हुए पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक घर नहीं आया था। नानी माँ की बातें सुनकर अचानक दादाजी चौंकते हुए बोले, क्या बहन जी, ऐसे क्यों बोला आकाश ने, आखिर ऐसा क्या हो गया है? अरमान ठीक तो है ना, मेरे अरमान को तो कुछ नहीं हुआ है ना? अब जैसे ही दादाजी ने बेचैन मन से ये सवाल किया, वैसे ही नानी माँ की आंखें भर आईं और वो अगले ही पल झिझकते हुए बोली, पता नहीं भाई साहब, बस मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। देखते हैं आहान और ध्रुव बेटवा कहाँ रह गए, आकाश बेटवा ने बोला है कि वहीं आकर सबको सारी बात बता देंगे। तभी राधिका और वंशिका ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, हम एक काम करते हैं, हम दरवाजे पर जाकर देखते हैं कि आहान और ध्रुव आ रहे हैं या नहीं। इतना बोलकर वो दोनों जल्दी से दरवाजे की ओर जाने लगी। वहीं रश्मि और रौनक परेशान मन से नानी माँ के आसपास आकर बैठ गई थी, क्योंकि इस वक्त नानी माँ की आंखों में आंसू थे।